लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी श्रमिकों को सम्मान एवं अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की जाए तथा बेरोजगारों को जन कल्याण हेतु योगदान का अवसर मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओ, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं एवं अड़चनों को जीवन से दूर रखें। क्या तू मृतकों के लिए चमत्कार दिखाएगा? क्या मृतक उठकर तेरी स्तुति करेंगे? क्या कब्र में तेरे प्रेम की चर्चा होती है? अधोलोक में तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान होता है? क्या मृत्यु की छाया में लोग तेरे चमत्कार विस्मृति के देश में तेरी न्यायप्रियता जानते हैं? श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 88वें भजन के 11 से लेकर 13 तक के पद। इन पदों के पाठ से ही विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस तथ्य पर हम गौर कर चुके हैं कि 28वां भजन हताशा में ईश भक्त की प्रार्थना है। भक्त अपनी परेशानियों का उल्लेख कर प्रभु ईश्वर से सहायता की आर्थ याचना करता है और उसकी याचना का आधार है उसका यह अटल विश्वास कि ईश्वर की अनुमति के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। वह अपनी सारी व्यथाओं को ईश्वर के समक्ष रख देता है ताकि ईश्वर जो परम न्याय करता है उसका न्याय करें। अपनी गलतियों के कारण वह भयभीत है और पाप के कारण ईश्वर के कोप का भय उसे सताता है। कहता है, तेरे क्रोध का भार मुझे दबाता है, उसकी लहरें मुझे डुबा ले जाती हैं। इस पद के विषय में हमने पवित्र बाइबल को उद्धृत कर श्रोताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि पाप से बढ़कर ऐसी कोई क्षति नहीं जिसकी भरपाई न हो सके। पाप एक व्यक्तिगत समस्या है जिसका समाधान हम स्वयं अपने बल पर नहीं पा सकते। हम अपने आप का उद्धार नहीं कर सकते। अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के बल पर पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। अस्तु उचित ही 88वें भजन का रचयिता प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख होता और अपनी वर्तमान दुर्जय स्थिति को प्रभु ईश्वर के समक्ष रखकर उनसे अपने उद्धार की याचना करता है। श्रोताओ, प्रार्थना न सुनी जाने पर हम भी हताश हो जाते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्यों कर प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। जब जीवन की परीक्षा कठिन और दुर्दम में लगने लगती है तब हम भी कराह उठते हैं और कई सवाल हमारे मन में उठने लगते हैं। ईश्वर को संबोधित कर वह कहता है, क्या तू मृतकों के लिए चमत्कार दिखाएगा? क्या मृतक उठकर तेरी स्तुति करेंगे? क्या कब्र में तेरे प्रेम की चर्चा होगी? अधोर लोक में तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान होता है? क्या मृत्यु की छाया में लोग तेरे चमत्कार, विस्मृति के देश में तेरी न्यायप्रियता जानते हैं? श्रोताओ, इन पदों को पढ़ते समय एक बात ध्यान में रखना हितकर होगा कि मृत आत्माएं वास्तव में ईश्वर के चमत्कार को जान सकती हैं और उनकी सच्चाई, न्याय और प्रेम की घोषणा कर सकती हैं, लेकिन मृत शरीर नहीं कर सकते हैं। मृत शरीर न तो ईश्वर से अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं और न ही उनकी स्तुति कर सकते हैं। अब हम इस उल्हाना या शिकायत को निराशा या हताशा की भाषा नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भजनकार ने यह सोच लिया था कि ईश्वर उसकी मदद नहीं कर सकते थे अथवा नहीं करना चाहते थे। इसी प्रकार हताशा के ये शब्द भजनकार के न्याय के अंतिम दिन मृतकों के पुनरुत्थान में अविश्वास की भी अभिव्यक्ति नहीं है और इसीलिए वह ईश्वर से त्वरित राहत की प्रार्थना करता है। यदि उसका विश्वास दृढ़ नहीं होता तो वह प्रार्थना ही क्यों करता? आगे 28वें भजन के 14वें और 15वें पदों में भजनकार मानो प्रभु ईश्वर को स्मरण दिलाते हुए पुनः सवाल करता है कि वह तो प्रतिदिन प्रार्थना करता है, फिर क्यों उसकी प्रार्थना अनसुनी रह जाती है? कहता है, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, प्रातःकाल मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचती है। प्रभु तू मेरा त्याग क्यों करता है? तू मुझसे अपना मुख क्यों छुपाता है? प्राचीन व्यवस्थान के योग के ग्रंथ में भी इस प्रकार की प्रार्थनाएं मिलती हैं। संकट में प्रभु को पुकारता हुआ योग इस ग्रंथ के 7वें अध्याय के 7वें और 8वें पदों में कहता है, प्रभु याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेंगी। जो मुझे देखा करता था वह मुझे फिर नहीं देखेगा, तेरी आंख भी मुझे नहीं देख पाएगी। और फिर 10वें अध्याय के 20वें और 21वें पदों में योब कहता है, मेरे दिनों की संख्या थोड़ी ही है, मुझे छोड़ दे जिससे मुझे कुछ सुख मिले, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से कोई नहीं लौटता। वस्तुतः श्रोताओं, 88वें भजन के 14वें पद में भजनकार एक प्रकार से प्रभु ईश्वर में अपने विश्वास की ही अभिव्यक्ति करता है। कहता है, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूं, प्रातःकाल मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचती है। कहता है कि मैं तो तुझसे प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं और तू मेरी प्रार्थना सुनता भी है, किंतु इस बार तूने देर क्यों कर दी? यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह कि हालांकि हमारी प्रार्थना तुरंत सुनी न जाए, तथापि हमें प्रार्थना करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्रों के अनुसार ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता एक नियुक्त और निश्चित क्षण के लिए है और वह उसी क्षण स्वतः को प्रकाशित करती है। श्रोताओ, जब हमारी प्रार्थना सुनने में विलंब होता है तब निश्चित रूप से हम महसूस करते हैं कि हमारे धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा ली जा रही है, किंतु इसके बावजूद जो व्यक्ति धैर्यवान रहते और दृढ़तापूर्वक प्रार्थना करते हैं उन्हें निराश नहीं होना पड़ता है। धैर्यवान विश्वासी की प्रार्थना उस समय और अधिक गंभीर हो उठती है जब वह संकट से घिरा होता है। प्रातःकाल अपना काम शुरू करने से पहले वह ईश्वर का नाम लेता है, उनकी दुहाई देता है तथा अपने सभी कार्यों पर ईश्वर की अनुकंपा और उनकी आशीष की मंगल कामना करता है। इसी प्रकार संध्या भले ही उसकी प्रार्थना अनसुनी रही हो, भले ही उसके सारे काम असफल रहे हों, वह दृढ़तापूर्वक प्रार्थना करता रहता है और अपने इस विश्वास को सुदृढ़ करता है कि एक न एक दिन प्रभु उसकी सुधि अवश्य लेंगे और कष्टों से उसका उद्धार करेंगे।
प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं।
वंदना करते हैं।